लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है थाईलैंड में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित की यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। थाईलैंड के बैंकॉक शहर से संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए न्याय, एकात्मता और मैत्री की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के हित में संपादित कार्य महान कार्य होते हैं। सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस इस समय थाईलैंड की अपनी 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा पर हैं। 23 नवंबर को वे थाईलैंड से जापान के लिए प्रस्थान करेंगे। एशियाई देशों में अपनी 7 दिवसीय प्रेरित यात्रा के प्रथम चरण में संत पापा बुधवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पधारे थे। राजधानी बैंकॉक के गवर्नमेंट हाउस में गुरुवार को आधिकारिक स्वागत समारोह संपन्न हुआ, जहां संत पापा ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रायुत चान ओखा, उच्च प्रशासनाधिकारियों, धर्माधिकारियों और राष्ट्र में सेवारत कूटनीतिज्ञों से मुलाकात की। वेटिकन और थाईलैंड की राष्ट्रीय धुनें बजाकर तथा सैन्य सलामी देकर संत पापा फ्रांसिस का राष्ट्र में हार्दिक स्वागत किया गया।
संत पापा फ्रांसिस ने अपनी थाईलैंड की यात्रा के दूसरे दिन गुरुवार पूर्वाहन को बैंकॉक के गवर्नमेंट हाउस में देश के प्रधानमंत्री, संसद के सदस्यों, राजनयिकों, राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं और नागर समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें अपना पहला आधिकारिक संदेश दिया। संत पापा ने माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने थाईलैंड को सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षक बताया, एक बहुनैतिक और विविध राष्ट्र जिसे अपने कई जातीय समूहों के बीच सौहार्द और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। संत पापा ने कहा कि वे सर्वोच्च बौद्ध धर्म गुरु के साथ दोस्ती और परस्पर संवाद को बढ़ावा देने के महत्व और तात्कालिकता के संकेत के रूप में अपनी बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने थाईलैंड के छोटे लेकिन जीवंत कैथोलिक समुदाय की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो हमें हमारे कई भाइयों और बहनों के क्रंदन के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करता है, जो गरीबी, हिंसा और अन्याय के संकटों से मुक्त होने के लिए तरस रहे हैं। थाईलैंड का शाब्दिक अर्थ है मुक्त भूमि। संत पापा ने इस तथ्य को संदर्भित करते हुए कहा, हम जानते हैं कि स्वतंत्रता केवल तभी संभव है जब हम एक दूसरे के लिए सह जिम्मेदार महसूस करते और हर प्रकार की असमानता को दूर करने में सक्षम होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि व्यक्तियों और समुदायों के पास शिक्षा, गरिमापूर्ण श्रम और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था तक उनकी पहुँच हो। न्यूनतम स्तर पर स्थिरता को प्राप्त करना एक अभिन्न मानव विकास को सक्षम बनाता है। संत पापा ने प्रवासन के मुद्दे की ओर सबका ध्यान आकर्षित कराया, जिसे उन्होंने हमारे समय की परिभाषित संकेतों में से एक कहा। संत पापा ने थाईलैंड वासियों को प्रवासियों और शरणार्थियों का स्वागत और स्वीकार करने हेतु सहृदय धन्यवाद दिया। संत पापा ने उन सभी महिलाओं और बच्चों की ओर से भी कहा जो शोषण, दासता, हिंसा और दुर्व्यवहार के हर रूप का शिकार बनते हैं। उन्होंने फिर से थाई सरकार के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया जो इस बुराई को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहे हैं। संत पापा ने यह भी याद दिलाया कि हमारा भविष्य बड़े पैमाने पर हमारे अपने बच्चों के सम्मानजनक भविष्य से जुड़ा हुआ है। संत पापा ने अंत में थाई अधिकारियों, राजनयिकों और नागर समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि हमारे समाजों को आतिथ्य के कारीगरों की आवश्यकता है। पुरुषों और महिलाओं को न्याय, एकजुटता और भ्रातृत्व सौहार्द के साथ सभी लोगों के अभिन्न विकास के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। आप में से प्रत्येक ने विभिन्न तरीकों से सामान्य भलाई की सेवा को सक्षम बनाने हेतु अपना जीवन समर्पित किया है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले संभ्रांत कार्यों में से एक है।
गवर्नमेंट हाउस में उपस्थित शिष्ट मंडलों के परिचय के उपरांत आइवरी रूम में संत पापा ने प्रधानमंत्री जनरल प्रायुत चान ओखा के साथ वैयक्तिक मुलाकात की। गोपनीयता की परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री और कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष के बीच लगभग 20 मिनटों तक चली बातचीत का विवरण प्रकाशित नहीं किया गया है। बातचीत के उपरांत संत पापा ने गवर्नमेंट हाउस के स्वर्ण ग्रंथ पर हस्ताक्षर किए तथा थाईलैंड के लोगों के प्रति उनके स्नेह के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। स्वर्ण ग्रंथ पर उन्होंने लिखा, मुझे मिले आतिथ्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर थाईलैंड के लोगों को जन कल्याण की खोज में सदैव सद्भाव और सहयोग करने में सक्षम बनाए।
बहुत सर्वोच्च धर्म गुरु को संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने इस बात की पुष्टि दी कि उनकी मुलाकात एक सम्मानपूर्ण यात्रा एवं आपसी पहचान का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत उनके उत्तराधिकारी ने की थी। संत पापा ने सातवें बौद्ध सर्वोच्च धर्म गुरु के साथ संत पापा पौल षष्ठम की मुलाकात की याद की। यह मुलाकात 50 वर्षों पहले वेटिकन में संपन्न हुई थी। संत पापा ने कहा कि वे उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं ताकि समुदायों के बीच सम्मान एवं मित्रता की भावना में वृद्धि हो। संत पापा ने कहा कि ये कदम इस बात को साबित करने में मदद देते हैं कि मुलाकात की संस्कृति संभव है, न केवल अपने समुदायों में बल्कि हमारी दुनिया में जो संघर्ष और बहिष्कार उत्पन्न करने और फैलाने के लिए प्रवृत्त है। इस तरह के अवसर हमें स्मरण दिलाते हैं कि धर्मों के लिए कितना आवश्यक है कि वे अधिक से अधिक आशा के स्तंभ बने तथा भाईचारा को बढ़ावा और गारंटी प्रदान करें। तब संत पापा ने दोनों धर्मों के सदस्यों द्वारा नए परोपकारी योजनाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं भाईचारा के रास्ते पर व्यवहारिक पहल को उत्पन्न करें और बढ़ाएं।
बैंकॉक में गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने शहर के वित्त रक्षा भूपित सतहित सिमरन बौद्ध मंदिर में थाईलैंड के बौद्ध परम गुरु सोमदेज फ्रा महामुनि वोंग से मुलाकात कर थाईलैंड के ख्रिस्तियों और बौद्ध धर्मानुयायियों के बीच परस्पर संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। थाईलैंड के बौद्ध धर्मानुयायियों की ओर से संत पापा फ्रांसिस का अभिवादन करते हुए परम गुरु सोमदेज फ्रा महामुनि वोंग ने कहा,
नब पेन हेत कार सम खन थांग प्रवत्ति सार ए क्रंग नंग सिंग पुंग जोत जाम लुक सिंग पुंग जोत जा रुक वाई पेन सुपनिमित हैंग नाम जाय मैत्री ती सासना जाक रोमन काथोलिक।
उन्होंने 35 वर्षों पूर्व संपन्न संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की थाईलैंड यात्रा का स्मरण किया। उस अवसर पर परम गुरु महामुनि वोंग भी उपस्थित थे। फिर उन्होंने थाईलैंड के सम्राटों द्वारा 1857 ईस्वी में संत पापा लियो 13वें, सन 1934 ईस्वी में संत पापा पियूस 11वें और सन 1960 में संत पापा जॉन 23वें के साथ वेटिकन में संपन्न मुलाकातों का भी स्मरण दिलाया। उन्होंने कहा, ये मुलाकातें कैथोलिक और बौद्ध धर्मों के बीच गहन और स्थायी मैत्री को प्रदर्शित करती हैं, जो परस्पर समझदारी की यथार्थ भावना और समान समझदारी का द्योतक हैं। संत पापा तथा बौद्ध परम धर्म गुरु के बीच संपन्न बातचीत के विषय में जारी वेटिकन प्रेस कार्यालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया, मैत्रीपूर्ण बातचीत के दौरान शांति को बढ़ावा देने के लिए दोनों धर्मों के बीच भाईचारे के मूल्य पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने बौद्ध धर्मानुयायियों से कहा, यदि हम भाई भाई हैं तो हम विश्व शांति में योगदान दे सकते हैं, निर्धनों पीड़ितों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि निर्धनों की सहायता सदा से ही आशीर्वाद का मार्ग रहा है। इसके अतिरिक्त मुलाकात के अवसर पर शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया, मिशनरियों की भूमिका को प्रकाश में लाया गया तथा स्मरण दिलाया गया कि मिशनरी शांति और मैत्री के संदेश वाहक हैं। मिशनरी स्थानीय लोगों पर हावी होने के लिए नहीं अपितु राष्ट्र के नागरिकों की सहायता के लिए आते हैं, जिसमें दोनों धर्मों के लोगों का योगदान अनिवार्य है। बौद्ध एवं ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों के परम धर्म गुरुओं की मुलाकात, शिष्टमंडलों के परिचय, उपहारों के आदान प्रदान, तस्वीरें खिंचवाने और परस्पर आशीर्वाद के साथ समाप्त हुई। वैटिकन सूत्रों के अनुसार अन्य उपहारों सहित संत पापा फ्रांसिस ने विश्व शांति और सामान्य सह अस्तित्व के लिए मानव भाईचारा शीर्षक से विगत फरवरी माह में आबू धाबी में प्रकाशित तथा ख्रिस्तियों और मुसलमानों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज की एक प्रतिलिपि भी बौद्ध परम गुरु को अर्पित की। उन्होंने कहा, मानवता को और अधिक भ्रातृत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा।
बृहस्पतिवार को अस्पताल के करीब 700 कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Para mí es una bendición presenciar de primera mano este valioso servicio.
मैं आपसे मुलाकात करने का अवसर पाकर खुश हूँ। इस मूल्यवान सेवा को अपनी नजरों से देखना मेरे लिए एक कृपा है जिसको कलीसिया थाई लोगों को प्रदान कर रही है, विशेषकर आवश्यकता में पड़े लोगों को। अस्पताल के आदर्श वाक्य पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा कि यह मुख्य रूप से परोपकार का कार्य है, जिसमें हम ख्रिस्ते न केवल यह दिखलाने के लिए बुलाए जाते हैं कि हम मिशनरी शिष्य हैं, बल्कि इसमें हमारी तथा हमारी संस्था की शिष्यता की निष्ठा की परख होती है। कर्मचारियों से उन्होंने कहा, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशनरी शिष्य हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति में ईश्वर को पाते हैं, विशेषकर बुजुर्गों, युवाओं और कमजोर लोगों में। इस तरह देख पाने के द्वारा आप दया के एक महान कार्य को पूरा करते हैं और स्वास्थ्य के देखभाल के प्रति आपका समर्पण चिकित्सक के सराहनीय एवं सरल कार्य के परे जाता है। संत पापा ने कहा कि यह मानव जीवन का स्वागत और आलिंगन करना है। जब इसे अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में पहुंचाया जाता है, तब प्रत्येक मानव व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए सम्मान एवं प्रेम से उत्पन्न करुणा द्वारा उनकी चिकित्सा की जानी चाहिए। चंगाई कार्य को एक शक्तिशाली मलहम के रूप में देखा जाना चाहिए, जो हर परिस्थिति में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करता और ऐसे नजर से देखता है जो प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्रदान करता।
बैंकॉक के वत्त रक्षा भोपित सतहित सिमरन बौद्ध मंदिर में गुरुवार को बौद्ध परम गुरु के साथ साक्षात्कार के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने शहर के कैथोलिक अस्पताल सेंट लुइस में रोगियों, उपचारकों और चिकित्सकों से मुलाकात की। सेंट लुइस बाल अस्पताल इस वर्ष अपनी स्थापना की 120वीं जयंती मना रहा है। 1858 ईस्वी में सियाम के परम धर्मपीठीय प्रेरितिक प्रशासक महाधर्माध्यक्ष लुइस द्वारा इस अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। अस्पताल का मिशन जहां प्रेम है वहां ईश्वर है आदर्श वाक्य पर आधारित है। आज इसका संचालन प्रतिष्ठित डॉक्टरों, उपचारिकाओं और शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा अति आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की मदद से किया जा रहा है। कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार करने सेंट लुइस अस्पताल के रंग भवन में गुरुवार को लगभग 700 चिकित्सक, उपचारक और कर्मचारी उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर संत पापा ने प्रभु ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि यह ईश्वर का ही अनुग्रह है जिसके चलते वे थाईलैंड के लोगों और विशेष रूप से यहां के जरूरतमंदों को कलीसिया द्वारा अर्पित अनुपम सेवा के चश्मदीद गवाह बने। इस अवसर पर उन्होंने प्रेम, दया, चंगाई और मानव जीवन की रक्षा जैसे मानवीय मूल्यों को प्रकाशित किया। अस्पताल के रोगियों और विकलांगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए संत पापा ने कहा कि इस प्रकार वे भले ही चंद क्षणों के लिए पीड़ितों के संग उनकी पीड़ा में उनके साथ हैं। बैंकॉक में गुरुवार अपरान संत पापा फ्रांसिस ने बैंकॉक के आम फार्म शाही प्रासाद में थाईलैंड के सम्राट महाराजा धीराज, वजीरा लॉन्ग कॉर्न रामा एक्स तथा महारानी साहिबा सुतिता तितजई से मुलाकात की। वैयक्तिक बातचीत, उपहारों के आदान प्रदान तथा तस्वीरें खिंचवाने के साथ ही शाही प्रासाद का समारोह संपन्न हुआ। इसी बीच गुरुवार को युवाओं को संबोधित संत पापा फ्रांसिस के एक वीडियो संदेश की भी प्रकाशना की गई, जिसमें संत पापा ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे अपना जीवन व्यर्थ कामों में न लगाएं, बल्कि उठें और कठिन परिश्रम द्वारा विश्व को सबके लिए एक शांतिपूर्ण और मनोरम स्थल बनाएं। बैंकॉक के प्रेरितिक राज दूतावास से संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को रात्रि जागरण प्रार्थना में लगे थाईलैंड के युवाओं के नाम अपना संदेश प्रेषित किया था। चलते रहना और प्रार्थना करना दोनों ही बड़े सुंदर काम हैं। युवाओं को हमेशा चलते रहना चाहिए, उन्हें ईश्वर के समक्ष अपने हृदय के द्वारों को खोल देना चाहिए जो चलते रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, हमें जीवन में कभी भी स्थिर नहीं होना चाहिए। कोई भी युवा व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं हो सकता, उसे चलते रहना चाहिए, हर पल और हर दम आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने कहा, युवाओं को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यदि गिर भी जाएं तो भी फिर उठने का उनमें साहस होना चाहिए। युवा लोग खुशहाली तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु वे यह स्मरण रखें कि खुशहाली कठिनाइयों को पार करने के बिना नहीं आती, अपितु यह साहस और प्रतिबद्धता के मार्ग पर नित्य अग्रसर होने से प्रस्फुटित होती है।
संत पापा फ्रांसिस ने थाईलैंड की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान बैंकॉक के राष्ट्रीय खेल मैदान में यूखरिस्तीय बलिदान अर्पित किया। यीशु के सवाल, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, इस पर अपना चिंतन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि यीशु ख्रिस्त अपने सुनने वालों को चुनौती प्रदान करते और इस विषय पर चिंतन करने का आह्वान करते हैं। हमारे परिवार के सदस्य कौन है, इसके उत्तर में यीशु हमें कहते हैं,
Todo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। इस तरह यीशु उस समय के धार्मिक और कानूनी प्रमाणों में बदलाव लाने के साथ उस अनुचित धारणा में भी परिवर्तन लाते हैं, जहां लोग अपने को उन बातों से भी ऊपर समझते थे। सुसमाचार में हम आश्चर्यजनक रूप में सवालों को पाते हैं जो शिष्यों के हृदय में हड़कंप मचाते और उन्हें सच्चाई की खोज करने हेतु निमंत्रण देते, जो जीवन पाने और जीवन देने का स्रोत बनता है। यीशु के सवालों का सार हमारे जीवन में नवीनता लाना और हमारे समुदायों को अतुलनीय आनंद से भरना है। उन्होंने कहा, इस धरती पर कदम रखे प्रथम प्रेरितों का उद्देश्य भी यही था। पवित्र आत्मा से प्रेरित उनकी झोली आशा से भरी थी, जिसके फलस्वरूप वे सुसमाचार के प्रचार हेतु निकल पड़े और उन परिवारों की खोज की जो उनके अपने नहीं थे। उन्होंने उनमें अपने प्रतिरूप को खोजने का प्रयास किया। इस भांति उन्होंने उन थाई भाई बहनों को पाया जो अब तक रविवारीय मिलन में अपने को अनुपस्थित रखते थे। ईश परिवार का अंग बनते हुए हम सभी प्रेरिताई शिष्यों की मंडली के अंग बनते हैं। हम यीशु के जीवन को अपने में अंगीकृत करते हुए ऐसा करते हैं। हम अपने प्रेरितों के कदमों में चलना जारी रखें, जिससे हम अपने माता पिता भाई बहनों से मिल सकें, उनके हंसमुख चेहरे को पहचान सकें, जिसे ईश्वर हमें देते हैं।